તારીખ 17/9/1983 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 609 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 9
ऐसे इसका मूल्य इतना कम कर दिया कि जैसे अंधश्रद्धा वालों से होता इतना ही नहीं हो, तो ऐसे प्रमाद में कभी आत्महित होवे ऐसा कभी बनता नहीं। या तो ये होने वाला सत्समागम सफल होवे ऐसा यहाँ बनता नहीं, ये वादक कारण हो गया इनका। और इंद्रिय विषय की उपेक्षा नदी हो तो इंद्रिय विषय की उपेक्षा न कि मैंने अति आसक्ति से जड़ विषयों में पांच इंद्रिय के विषयों में तीव्र आसक्ति से तीव्र सुख बुद्धि से प्रवर्तना हुए, तीव्र रस से प्रवर्तना हुए तो भी उसको सत्संग का मूल्य नहीं आएगा। इन विषयों का इतना मूल्य हो गया, इतना रस आया, इतना सुख बैठता है तो वहां उसको सत्संग का मूल्य नहीं भाषित होगा। तो उसको भी जिस प्रमाण में वो सत्समागम करेगा उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बाधाएं उनको खड़ी है। ये तो इनका विभिन्न दृष्टिकोण से अर्थघटन है चारों पद का, लेकिन इसका एक पारमार्थिक विचार है इस विषय में, ये चारों गोल में लागू होता है। ये इस प्रकार है कि मिथ्या आग्रह किसको कहवे, कि मैं ज्ञान मात्र आत्मा हूं, ऐसी अंतर सावधानी स्वरूप के विषय में नहीं करें, स्वरूप के लिए ऐसी अंतर सावधानी नहीं करें और अन्य अन्य विषय में सावधान रहें, ये इनका मिथ्या आग्रह है। ये हर एक में लागू पड़ता है। क्या कहते हैं किस है? कि अपने स्वरूप के प्रति जोर होना। आग्रह में क्या होता है? वजन आता है, मुख्यता होती है, जोर डाला जाता है। तो मैं ज्ञान मात्र हूं ऐसा अपने आत्मा के विषय में जोर आने के बजाय पर भाव में शुभादी क्रिया में इसका जोर जाता है, इसका आग्रह बनता है, तो उसको मिथ्या आग्रह कहते हैं। एक पारमार्थिक विषय का इसका स्पष्टीकरण है। वैसे ही अपने स्वरूप में मैं ज्ञान मात्र हूं ऐसी तीव्र भावना से आना चाहिए, इसके बजाय ऐसा भाव होने, तो उसको अन्य अन्य भाव में कि मैं सही काम करता हूं ऐसा अभिप्राय रहता है, ये मेरा सही कार्य है, ऐसे करते करते मुझे लाभ हो जाएगा, मुझे हित हो जाएगा, ऐसे अन्य भाव में अभिप्राय को दृढ़ करना स्वच्छंद युक्त अभिप्राय है।
11 भाषी 20 भाषी दोनों के लिए है जी। तो स्वच्छंदपना 11 भाषी 20 भाषी दोनों के लिए है।
हाँ, दोनों के लिए है। 11 भाषी को भी है और निश्चय आभासी को भी है, और उभयाभासी को भी है। आभास हुआ यों के सत्संग हुआ, इसलिए थोड़ा नाजुक ये प्रश्न है। कोई ऐसा तर्क कर सकते हैं यहाँ पर, ऐसा प्रश्न संभवित है कि क्या करें हम, हमें तो शास्त्र और सत्समागम जहाँ भी सत्ता निरूपण हो तो निमित है, उसमें से हमको तो सत को ही पकड़ना था, सत को ही समझना था, सत को ही लेना था, लेकिन करे क्या, समझ में कोई गलती हो जाती इसमें करे भी क्या, हमारा क्या दोष है, कोई इरादा से थोड़ी बलिनाशी से इरादा से गलत थोड़े करते हैं, गलती हो जाए इसमें करे भी क्या, ऐसा एक प्रक्रिया संतुलित है। और इसमें हमारा भाग्य का दोष होगा, जैसे हमारी कंपनी से भी समझो, जैसे व्यापार करते हैं पैसा कमाने को जाते हैं, नुकसान हो जाता है, क्या करें किसी में, तो पैसा देने के खोने के लिए थोड़ा व्यवसाय करता है। ऐसे हमने भी ये उद्यम किया, व्यवसाय किया, सत्समागम में आए, सत्शास्त्र का अध्ययन किया, और फिर भी इसमें हमारी समझ में गलती रह गई और आभास हो गया, या निश्चय आभास या व्यवहार आभास या उभयाभास, आभास हुआ मैंने जैसा है वैसा प्रतिभास नहीं हुआ, और आभास हो गया तो हम क्या करें, इसमें हमारा क्या दोष है, ऐसा एक प्रश्न संभवित है। आप नहीं उठाते हैं तो फिर क्या करें, थोड़ा कहते हैं कि इस मार्ग में जो पूरी दरकार से चलता है उसको ऐसा नहीं बनता है। मेरे दरकार में जो क्षति है कमी है उसमें ही ऐसा होता है, ये खास महत्वपूर्ण पहलू है। ऐसा क्यों माने हम, ये तो एक जवाब हो गया सीधा साधा, लेकिन हम क्यों माने ऐसा, इसके पीछे क्या सबूत है, क्या है ऐसा क्यों, मतलब ये भी एक प्रश्न हो सकता है, ऐसा क्यों, दरकार होए तो गुर होए ही नहीं, ऐसा क्यों, कि इसमें बात खुद की है स्वयं की है, क्या है, दूसरे की बात नहीं है कि जो छिपी रह जाए, ये ऐसा विषय है। और इस विषय में सब भावों का ही विषय चलता है, उल्टे भावों को भी बताया जाता है, सुलटे भावों की भी बताया जाता है, और सभी प्रकार के इनके जो पहलू हैं वो इतने भावात्मक है कि अगर वो अपने अनुभव को देखते हुए अवलोकन करते हुए इस विषय में पूरी दरकार से आगे बढ़े तो ज्ञानियों का अनुभव है कि इसमें भूल होती ही नहीं, ऐसा बनता है। यानी कोई अपूर्व जिज्ञासा है कि उसको भूल का कारण नहीं बनता, इसी मुद्दे पर है। खरा जिज्ञासु सच्चा जिज्ञासु जीव को अंदर में उंडे ज्ञान की किसी भूल रह गई हो, ये समझदारी की बात चलती है, क्या करें हम, गलती हो जाए तो भूल रह जाए तो क्या करें, हम तो भूल रखनी थोड़ी है, इस प्रश्न का उत्तर इसमें है कि सच्चा जिज्ञासु जीव को अंदर उंडे ज्ञान की कुछ भूल रह गई हो तो भी उसको खास विशिष्ट जिज्ञासा होने से, अपूर्व जिज्ञासा होने से वो भूल निकल जाएगी, क्यों, ऐसा भी क्यों, हर जगह हम तो प्रश्न करेंगे तो उसको विशिष्ट जिज्ञासा है तो भूल होने के बावजूद भी निकल जाएगी, ऐसा क्यों, ये भी हमारा प्रश्न, हम तो पीछे पड़ेंगे तो पूरी दरकार से पड़ेंगे ना, अब तो ही चलता है कि कितनी दरकार, तो हर बात में इनका तलस्पर्शी ज्ञान करें, तलस्पर्शी समझ करें, ऊपर ऊपर से किसी को छोड़ नहीं दें, कि उसलिए भी जिज्ञासा के काल में ही सत्य ग्रहण करने का अवकाश होता है। ये अपूर्व जिज्ञासा ज्ञान की पर्याय में अवकाश पैदा करता है, सत्य क्या है, जिज्ञासा में क्या हुआ है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, उसमें पूर्वग्रह की पूर्वग्रह को उसने हटा दिया है कि अभी तक जो मैं कुछ समझा हूं वो कुछ नहीं, अब सत्य क्या है वो मुझे समझना है, तो सत्य के विषय में जो अपूर्व जिज्ञासा आई वो ज्ञान को अवकाशित करता है, गुरुदेव ये कहते हैं, ये भी हमने लिया है कि मुमुक्षु को, जिज्ञासु को अपने विचार के क्षेत्र में, विचार के स्थान में सत्य के समझने के अवकाश रखना चाहिए। ये 1007 नंबर का है। ये जिज्ञासु जीव को सत्य का स्वीकार होने के लिए अंतर विचार के स्थान में गुरुदेव के शब्द बहुत पाव रही है, यानी बहुत अनुभव को प्रसिद्ध करते हुए हैं। फिर से जिज्ञासु जीव को सत्य का स्वीकार करने के लिए इस अभिप्राय को लेकर बैठा हो, ऐसा अंतर विचार के स्थान में, मैंने ऊपर ऊपर से ऊपर उपलब्ध दरकार से नहीं, अंतर विचार के स्थान में सत्य को समझने का अवकाश अवश्य रखना चाहिए। ये जगह खाली रखना, सत्य क्या है, कैसा है, उसको समझने के लिए जहां तक इसकी अनुभूति नहीं हो वहां तक इसके लिए जगह खाली रखना, इसकी पूर्ति कभी नहीं करना अनुभूति पहले, कि हम भी सत्ता समझते हैं, हम भी ऐसा कहेंगे, हम भी ऐसा कहेंगे, हम भी ऐसा कहेंगे, ये गड़बड़ी तुझे सत्य को दूर कर देगी, सत्य से दूर कर देगी। ऐसा ज्ञानियों की ये शिक्षा है। तो कहते हैं कि ऐसे जिज्ञासा होने से सच्चा जिज्ञासु को कभी कभी भूल रह जाएगी तो भी निकल जाएगी। सच्चा जिज्ञासु को जिज्ञासा के साथ ही स्वभाव की लगन होती है, स्वभाव प्राप्ति की लगन होती है, आत्म प्राप्ति की लगन होती है, और उस लगन के बल से, ये दूसरा फैक्टर बताया, क्या क्या है इनकी अवस्था में, भले ही इनको मालूम होए नहीं होए, लेकिन ज्ञानी तो मुमुक्षुओं का, अज्ञानियों का पल्स पकड़ता है कि इसमें कितने धबकारे चलते हैं। ये पल्स का विषय वैदिक विज्ञान में बहुत गहरा है, बहुत पुराने काल में हमको वेद में आए थे, हमारे यहाँ थोड़ी 80 साल की उम्र के थे, टाइफाइड वाले मरीज को बोला कि इस आदमी ने 15 दिन पहले सुखड़ी, सुखड़ी क्या कहते हैं, वो गुड़ की बनाई जाती है, गुड़ आता और घी की खाई है, उस पर पानी पिया है और फिर वो दौड़ा है, थोड़ा लड़का था, वो जम गई है, अभी निकलती नहीं है, निकलेगी, पकेगी, मन पकेगा, निकलेगा, फिर उसको आराम होगा, इतना दिन लग जाएगा, बस ऐसी बात थी। वो तो आया था बाहर गांव से, लेकिन 15 दिन पहले उसने खाया था, ये बात पक्की थी, क्या चीज खाया था वो बता दिया, कहां से बताया, पल्स पकड़ के बताया। पर पल्स तो यहाँ रहती है और पेट यहाँ रहता है, यहाँ का ज्ञान यहाँ हो गया। देखो ये विज्ञान की एक खूबी है, जैसे वैसे ज्ञानी को भी अज्ञानी के थोड़े भाव का चिन्ह देख के ये सिम्टम का नॉलेज है। दैहिक विज्ञान में खास करके मेडिकल साइंस में इनका बहुत बड़ा प्रकरण है कि इसके चिन्ह देखते हुए इसके रोग को, रोग का मूल कारण को और अनेक प्रकार की विषय के जो है बातें वो समझ सकते हैं। वैसे ही इस विषय में भी विज्ञान में है, इस अनुभव में, अनुभव के विषय में जो निपुण हुए और पहले जो अपनी अज्ञान अवस्था में थे उसका भी उनको अभ्यास हुआ है, और ज्ञान अवस्था में आए तो कैसे पलटे, इस विधि का उनको ज्ञान है, इसलिए इसके वचन में भी इस विधि का निरूपण आता है कि ऐसा पलटा तुम्हार, जिंगवाणी की पुष्टि में बात आती है, या विधि संत कही घनी है, घनी है दिन दैन गड़े पटाए, इसमें ये बात है, या विधि कैसी विधि से कहते हैं, कहते हैं इतनी बात नहीं है, कहने की पद्धति जो है विधि है वो भी एक ज्ञानियों की बहुत अनुभवपूर्ण होती है, अलौकिक अनुभव करा है, दुनियादारी के विषयों का अनुभव की कोई इसमें कीमत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, इसका कोई स्थान नहीं है कि इसका कोई कंपैरिजन करें, हम बराबरी करें, ऐसा एक बहुत भीतर में स्वभाव को ग्रहण करने की जो सूक्ष्मता है इसके परिणाम में, इसके ज्ञान में, ये बहुत बड़ी अलौकिक है। कहते हैं कि लगन के बल से ज्ञान की कुछ भूल रह गई हो तो वो भी निकल जाती है, निकल जाएगी, उसको रहेगी नहीं। इनकी लगन जो है कि मुझे स्वभाव ही चाहिए, तो ये स्वभाव चाहिए, इसके विरुद्ध कोई भी इसको मिल गया, दूसरा तत्व मिल गया, आ गया इनके परिणाम में, वो बोलता है तो उसको खटकेगा, आखरेगा और उसमें वो शामिल नहीं होगा, उसको अनुमोदन नहीं करेगा। अपनी भूल का दोष का बचाव उससे होगा नहीं, भूल को भूल समझते हुए निकल जाती है। क्या कहते हैं कि स्वभाव की जो लगन है उसमें स्वभाव को ग्रहण करने की खास भावना है, स्वभाव को अनुभव करने की विशिष्ट भावना है, ये भावना उसे कई जगह पे अटकने के प्रकार की, कहीं भी उसको अटकने के प्रकार की गंध भी रह गई हो तो लगने के बल से निकल जाती है, ऐसा अनुभव पूर्ण ही वचन है। इसलिए ऐसी शंका और भय रखना उचित नहीं है, इसका स्थान नहीं है कि जो पूरी लगन से और पूरी भावना से और सच्ची जिज्ञासा के इस विषय में प्रवेश करे और भूल से गलत मार्ग में आ जाए, ऐसा कभी बनता नहीं, ऐसा बनता ही नहीं, क्योंकि ये अनुभव का विषय है, स्वयं का अनुभव का विषय है। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात क्या है कि प्रयोजन सुख का है, क्या है, जीव का प्रयोजन सुख का है और उसको दुख में सुख का अनुभव हो रहा है, इसे ज्ञानी कल्पित सुख कहते हैं, आभास मात्र सुख कहते हैं। अब कहते हैं कि तुझे नहीं दिखता है तो अवलोकन कर, हम तो उनको न्याय से भी कहेंगे, तर्क से भी कहेंगे, युक्ति से भी कहेंगे और अनुभव से भी कहेंगे, ये विषय इतना स्पष्ट हो जाएगा कि पूरी दरकार से, पूरी जिज्ञासा से अपना अनुभव का अवलोकन करें और उसको ये नहीं समझ में आए, ऐसी बात कभी बनती नहीं है, न भूतो न भविष्यति, न किसी को कभी ऐसा हुआ है न कभी होने वाला भी है, ऐसा ज्ञानियों का ये गारंटेड आश्वासन है। ऐसा नहीं है कि होगा भी नहीं भी होगा, तुम्हारे नसीब में होगा तो मिलेगा, नहीं नसीब में होंगे तो नहीं मिलेगा, की बात नहीं है। ऐसे सच्ची भूमिका वाले को तो इसका नसीब ही देख लिया, ज्ञानी ने इसका नसीब देख लिया है कि ये तो पाने वाला ही है, तब इसके प्रति उनको और प्रमोद भाव रहता है, और प्रमोद भाव रहता है तो लोग भी ऐसा समझता है कि ये कोई पात्र दिखता है कि इनके पर इसकी अमी दृष्टि है, कृपा दृष्टि है, ऐसा इनके भावों में देखने को आता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ज्यादा पैसा खर्च करता है इसलिए इनके पर वो कृपा रखता है या अमी दृष्टि होती है, ऐसा नहीं है। ये पुण्य वाला है इसलिए ऐसा ज्ञानी को इनके पर भाव आता है, ऐसा नहीं है। इनकी गुण की प्राप्ति की जो भावना है उस पर उनको जो है बिल्कुल प्रमोद भाव आता है, इसको इनकी कृपा दृष्टि कहने में आती है। हमारे एक एजेंट थे व्यापार में, तो जानते थे कि हम स्वामी जी के पास जाते हैं बार बार, सुना भी होगा, बोले कि ऐसा करो भाई साहब, हम भी आपके साथ आए हैं तो हमारे सिद्ध स्वामी जी का एक दफे हाथ रखा दो। क्या कहा, हमने सुना है कि स्वामी जी के पास अगर इसका आशीर्वाद मिल जाता है पाप में तरक्की हो जाती है, ऐसा करके बोला उनको। मैंने कहा भाई हमारे स्वामी जी ऐसे नहीं है कि हर एक पर हाथ रखें, फिर हाथ तो रखते ही नहीं थे, ये चमड़े वाला आपको किसी के सिर पे रखा ही नहीं है, लेकिन जिसको इनकी कृपा दृष्टि कहें ऐसा जो हाथ है जो इसका आश्वासन रूप में है, ये तो ऐसे योग्यता वाले कोई रहता है। इसमें सभी जो नमस्कार वंदन आदि करते हैं सभी के प्रति तो ऐसा नहीं होता है, तो आते हैं तो सही सभी वंदन नमस्कार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है वहां तो, नहीं तो इनकी गहरी पिछान है, तीक्ष्ण सूक्ष्म दृष्टि है, इसमें वो पहचान जाते हैं कि ये कोई पात्र आत्मा है, मूल का अभिलाषी है, और पूरी इनकी भावना देखी जाती है, तो इनके लिए उनको सहज प्रमोद रहता है, ये सहज परिस्थिति है, उसको ऐसा कहता है कि ज्ञानी की कृपा के पात्र हो गया है। लेकिन मूल में तो इसका उपादान कारण है जिसका ज्ञान निमित्त की प्रधानता से कराने में आता है, ऐसी बात है। तो क्या कहते हैं कि यहां भी पारमार्थिक दृष्टि में इस चारों मूल को समझ सकते हैं कि अपना ज्ञान मात्र स्वरूप में भावना से छंद में प्रवृत्ति करना, उसको छंद कहते हैं, वो सही सच्चा प्रसंद है, स्वयं में अपना छंद मैंने अपने में प्रवृत्ति करना, ये गुण रूप है, इसका अर्थ कथन है, गुण रूप है और वो आत्मा को नुकसान नहीं करता। इसके बजाय रागादि में अहमपना करना, ज्ञान मात्र स्वरूप में अहमपना नहीं हो रागादि में अहमपना करना, यही सबसे बड़ा पारमार्थिक प्रश्न है और इससे आत्मा को नुकसान होता है, लाभ नहीं होता। और प्रमाद और इंद्र विषय के विषय में भी इनकी आगे व्याख्या करेंगे आज के समय।